मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले माला से, हसन फकीर का जन्नत में बेसरा होगा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن، اس میں ہم حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمت اللہ علیہ کے کلاموں کی تشریحات سنتے ہیں، اور آپ کا دیوان ہے مجموعہ کلام ہے ذوق نعت جو دعوت اسلامی نے شائع بھی کر دیا ہے، اور دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بڑی زبردست نعتیہ یہ کتاب ہے ذوق نعت، اور اس کے کلام، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. اس کے 19 میں سے 10 اشعار پچھلے پروگرام میں ہم نے وضاحت کے ساتھ سنے تھے، طرز میں بھی اور اسکرین پر بھی آپ نے دیکھے تھے. مزید اس کلام کے بقیہ 9 اشعار آج ہم سمجھنے سننے کی سعادت پائیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، آئیے حسب معمول پہلے اس کلام کے 11 سے لے کر 15 تک 5 شعر آپ کو ہم طرز میں سناتے ہیں. آپ غور سے سنیں، سمجھ نہ آئے پھر بھی سنیں، جھومتے ہوئے سنیں. عاشق رسول کا قلم ہے، بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کریں گے، مشکل الفاظ بھی اسکرین پر دکھائیں گے، اشعار بھی آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے. توجہ سے عشق رسول میں ڈوب کر ان اشعار کو سنیے، سمجھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا، عدو کی آنکھ بھی محشر میں حسرت سے نمو تکتی، اگر تیرا کرم کچھ اے نگاہ پاک ہو جاتا، بہارِ تازہ رہتی کیوں خزاں میں دھجیاں اڑتی، لباسِ گل جو ان کی ملگجی پوشاک ہو جاتا، کماندارِ نبوت قادر اندازی میں یکتا ہے دو عالم، کیوں نہ ان کا بستہ فتراک ہو جاتا، نہ ہوتی شاق اگر در کی جدائی تیرے ذرے کو، قمر ایک اور بھی روشن سرے افلاک ہو جاتا، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، تیری رحمت کے قبضے میں ہے پیارے قلب ماہیت، میرے حق میں نہ کیوں زہرے گناہ تیری یاک ہو جاتا.
آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، آپ نے 5 شعر طرز میں سماعت کیے، اب کچھ توجہ سے ان کی وضاحت سماعت فرمائیے، تشریح پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں عدو کی آنکھ بھی محشر میں حسرت سے نہ منہ تکتی، عدو کی آنکھ بھی محشر میں حسرت سے نہ منہ تکتی، اگر تیرا کرم کچھ اے نگاہ پاک ہو جاتا. عدو کہتے ہیں دشمن کو، आंख का महशर में हसरत से मुंह तकना, तकना कहते हैं किसी एक चीज को देखते ही जाना, देखते ही जाना, देखते ही जाने से तकना कहते हैं, ये उर्दू का लफ्ज है। हसरत कहते हैं मायूसी को, परेशानी मायूसी। तो जो दुश्मन मुस्तफा होगा, अब यहां मुराद अगर गैर मुस्लिम लिया जाए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना और ना माना और आपको अजियतें दी, तकलीफें दी वगैरह वगैरह, आपसे दुश्मनी की, तो कह रहे हैं कि उसकी आंख महशर में आपको तक रही होगी और देख रही होगी कि काश मैं अपना बुरा ना करता और इस सच्चे की सच्ची बात को मान लेता, तो वो आपके चेहरे को तक रहा होगा महशर में। लेकिन कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुनिया में आपकी निगाह पाक उस पर पड़ जाती तो वो ईमान वाला हो जाता, साहिब ईमान हो जाता, और आपका कुछ कर्म, आपकी कुछ निगाह पाक उस पर पड़ जाती तो उसका भी काम बन जाता। अगले शेर में कहते हैं, बहारें ताजा रहती क्यों खजा में धज्जियां उड़ती, बहारें ताजा रहती क्यों खजा में धज्जियां उड़ती, लिबासे गुल जो उनकी मलगजी पोशाक हो जाता। बहारें ताजा कहते हैं हमेशा की बहार, एक ताजा बहार और एक हमेशा की खूबसूरती मिल जाती। खजा ये पतझड़ के मौसम को कहते हैं जिसमें पत्ते झड़ रहे होते हैं, फूल मुरझा जाते हैं और एक बेरौनकी और एक जवाल सा चमन पे बाग पे नजर आ रहा होता है। धज्जियां उड़ना, ने टुकड़े टुकड़े होना, बिखर जाना और इधर उधर पत्तों का उल्टा पुल्टा पड़ा होना, तो ये लिबास गुल को कह रहे हैं, गुल यानी फूल को कह रहे हैं कि ए फूल, अगर तुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए तो तू उनका लिबास बन जाता, तू महबूब अलैहिस्सलाम के लिबास का हिस्सा बन जाता। मलगजी पोशाक, शेर में एक लफ्ज आया है मलगजी पोशाक का, यहां माना है आम सा लिबास। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज अदना नहीं, कोई शय आम नहीं है, हर चीज आपसे खास हो जाती है, लेकिन यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से कहा जा रहा है। जैसे एक इंसान का कोई आम लिबास होता है जो घर में नॉर्मली वेयर करता है, नॉर्मली पहनता है, और एक होता है किसी इवेंट पे पहनता है, खास जगह पर पहनता है, खास मौके पे पहनता है, तो यहां इस एतबार से कहा जा रहा है कि ए गुल, ए फूल, अगर तू महबूब अलैहिस्सलाम का कोई आम सा लिबास भी बन जाता, आम सी पोशाक हो जाता। पोशाक कहते हैं लिबास को, पोश से पोशाक है, लिबास आपके जिस्म को वो ढांप देता है, इसीलिए उसे पोशाक कहा जाता है। वैसे पोशाक का माना है ढांप देने वाला, क्योंकि लिबास हमारे जिस्म को ढांप देता है इसलिए इसे पोशाक कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐ फूल, अगर तू हमेशा की जिंदगी और हमेशा की बहारें ताजा चाहता और चाहता है तो फिर तू महबूब का लिबास बन जाता, तो ना खजा तुझ पे पड़ती, ना जवाल तुझ पे पड़ता, ना तू मुरझाता, ना खजा में यूं धज्जियां उड़ती कि तू कभी इधर पड़ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर गिर रहा है, हमेशा की बहारें ताजा मिल जाती, हमेशा लोगों की नजरों में रहता और हमेशा की खूबसूरती तुझे हासिल हो जाती। अब ये बातें जो होती है ना, ये अल्फाज कुछ होते हैं, मतलब कुछ होता है। अब ये तो फूल की बात है, लेकिन अगर इससे मुराद कुछ यूं ले जाए कि ए आशिक रसूल, अगर तू हमेशा की जिंदगी और हमेशा की इज्जत चाहता है, दुनिया में भी इज्जत, उकबा में भी इज्जत, कब्र में भी राहत, तो फिर महबूब अलैहिस्सलाम के दामन से लिपट जा, दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो जा, फिर ना तुझ पे जवाल आएगा, ना खजा पड़ेगी, ना तू इधर उधर धज्जियों की तरह उड़ता फिरेगा। अगर इज्जत चाहिए तो फिर इकबाल का वो शेर याद रख कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आला हजरत का वो शेर याद कीजिए जिसमें फरमाया कि वो के उस दर का हुआ खलके खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। तो महबूब अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्तगी की यहां पर बात हो रही है, और अल्फाज में फूल, बहार ताजा और ये सारी बातें हैं, लेकिन यही तो कमाल है कि अल्फाज कुछ हो, मुराद कुछ हो, मुहावरात का, इशारात का इस्तेमाल, यही तो शायरी का फन है। अगले शेर में कहते हैं, कमांदारे नबूवत कादिर अंदाजी में यकता हैं, कमांदारे नबूवत कादिर अंदाजी में यकता हैं, दो आलम क्यों ना उनका बस्ताए फितराक हो जाता। अभी भी बड़ा गहरा शेर है, वही मुहावरात की बात है इसमें भी। कमांदार कहते हैं सिपे सालार को, लीडर को, सरदार को, कमांदारे नबूवत यानी नबूवत के सरदार, यानी हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हेड हैं और मखलूक के सबसे बड़े हैं, सरदार हैं और कमानदार हैं। कादिर अंदाजी कहते हैं बिल्कुल ठीक ठीक निशाना लगाना, जो कमानदार होता है, तीर कमान जिसके हाथ में होता है वो निशाना भी लगाता है। यकता, यकता का मतलब है बेमिसाल, लाजवाब, बेहतरीन निशाना लगाने में आपका कोई सानी नहीं है। जो शिकारी होता है वो बेहतरीन ठीक ठीक निशाना लगाता है, जो अच्छा शिकारी होता है। अगले मिसले में एक लफ्ज आया है बस्ताए फितराक। बस्ता तो बैग वगैरह को कहते हैं जिसमें सामान रखा जाता है, जिसमें चीजें रखी जाती हैं। बस्ताए फितराक उस बैग को कहते हैं जिसमें शिकारी अपना शिकार रखते हैं, जो भी शिकार किया उसमें डाल दिया, जो भी शिकार किया उसमें डाल दिया, और शिकार को जमा करते हैं फिर उनका जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो शिकारी का वो बस्ताए फितराक होता है। तो यहां भी मुहावरात का इस्तेमाल है, और कह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादिर अंदाजी में यकता है, निशाने में पक्के हैं, आपका जो कान वो पूरा ठीक ठीक करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के माहिर हैं अपने काम में, तो फिर दो आलम क्यों ना आपका बस्ताए फितराक बन जाता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का शिकार कह लीजिए, या आपके पैगाम को कबूल करने वाला कह लीजिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फिर अपने काम को क्यों ना पूरा फरमाते। और यकीनन आपने अपना काम, अपनी तबलीग, अपने फर्ज को पूरा पूरा अंजाम दिया और दो आलम में अपने पैगाम को फैला दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुराद यहाँ से शिकार, शिकारी, बस्ताए फितराक ये है, लेकिन ये सब इशारे हैं, इस्तियारे हैं। मुराद ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम में पक्के हैं, अपने काम में माहिर हैं, अपने मामले में बिल्कुल ठीक ठीक मामले को पूरा करने वाले जहीन और फतीन शख्सियत के मालिक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर ये कमाल क्यों ना नजर आए कि पूरी कायनात में आपका नाम जो है वो लिया जा रहा है और बोल बाला है। अगले शेर में कहते हैं न होती शाख अगर दर की जुदाई तेरे जर्रे को, न होती शाख अगर दर की जुदाई तेरे जर्रे को, कमर एक और भी रोशन सरे अफलाक हो जाता। सुभान अल्लाह। शाख कहते हैं गिरा गुजरना, तकलीफ दे होना, दर की जुदाई यानी आपके दर से दूर जाना, जर्रा गिरे पड़े मिट्टी के टुकड़े को कहते हैं जर्रा। मुराद यहाँ गुलाम मुस्तफ़ा है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है, जो आपके दर से वाबस्ता हो गया ना, वो फिर ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है, ऐसा चमकता है, ये फिर अगर वो आसमान पे चला जाए तो दूसरा चांद बन जाए, कमर बन जाए। लेकिन वो तो कमर यूं नहीं बन रहा कि उसे कमर बनने के लिए, चांद बनने के लिए आपके दर से दूर जो जाना पड़ेगा, और आपके गुलाम को आपके दर की जुदाई पसंद नहीं है, लिहाजा आपको चांद एक ही दिख रहा है, वरना ये जर्रा दर मुस्तफा अफलाक पे जाए तो चांद बन जाए और एक और चांद नजर आए लोगों को। ये भी वही मुहावरात और इस्तियारे तशबीहात हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा की क्या शान है, मेरे नबी के गुलाम की क्या शान है, तो फिर मेरे नबी को मैं कैसे चांद की तरह कहूँ, वो तो चांद बनाने वाले हैं, रोशनियां बांटने वाले हैं, तो मैं उनको कैसे चांद कह सकता हूँ। किसी ने कहा ना कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। तो बड़ा प्यारा ये शेर है, न होती शाख अगर दर की जुदाई तेरे जर्रे को, न होती शाख अगर दर की जुदाई तेरे जर्रे को, कमर एक और भी रोशन सरे अफलाक हो जाता। सरे अफलाक यानी आसमानों पर, कमर कहते हैं चांद को। अगले शेर में अर्ज करते हैं तेरी रहमत के कब्जे में है प्यारे कल्बे माहियत, तेरी रहमत के कब्जे में है प्यारे कल्बे माहियत, मेरे हक में न क्यों जहरे गुना तिरयाक हो जाता। कब्जे में होना यानी हाथ में होना, कंट्रोल में होना। कल्बे माहियत कहते हैं हकीकत को बदल देना, किसी चीज की बिल्कुल हकीकत को उलट कर देना। एक चीज है जो दवाई का काम देती है, उसे अगर जहर बना दिया जाए तो ये हकीकत बदल जाएगी ना। एक चीज है जो प्यास बुझाती है, वो अगर प्यास बढ़ाए तो ये हकीकत को उलट कर देना, इसे कहेंगे कल्ब माहियत। कल्ब यानी उलट देना, माहियत यानी हकीकत। इस शेर में एक लफ्ज आया तिरयाक, तिरयाक यानी जहर की दवा। तो कह रहे हैं कि ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में तो सब है, आप मालिक व मुख्तार हैं, आपके हाथ में कल्ब माहियत है, आप चाहें तो किसी चीज की हकीकत बदल दें। गुनाह जो है ये जहर है, गुनाह जो है वो तबाह और बर्बाद करने वाला है, लेकिन अगर आप निगाह करम फरमा दें तो मेरे हक में जहर गुनाह को तिरयाक बना दें, इसी जहर को, इसी गुनाह को मेरे हक में आप मेरी बर्बादी से बचाने का जरिया बना दें। आप जो चाहे कर सकते हैं, तो जहर गुनाह को आप मेरे लिए दवा बना दें और मुझे अपनी शफात से, अपने करम से, اپنا سچا غلام بنا لیں اور مجھے جنت آپ اپنے کرم سے عطا فرما دیں تو کوئی بعید نہیں ہے، میرے حق میں زہر گناہ کو آپ اسی کی دوا بنا دیں تو آپ سے کوئی بعید نہیں ہے، آپ مالک و مختار ہیں، سبحان اللہ۔ تو ناظرین یہ ایک استغاثہ ہے، یہ فریاد ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کرم فرمائیے کہ میرے حق میں جو میں گناہوں کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں، آپ انہی گناہوں کو میرے حق میں دوا بنا دیجئے اور ایسا کرم فرما دیجئے کہ میں نیک بن جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں۔ یہاں پر پانچ شعر مکمل ہوئے، اس کلام کے مزید بقیہ چار شعر آئیے طرز میں آپ کو سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خدا تارے رگے جا کی اگر عزت بڑھا دیتا، شیرا کے نالے پا کے سید لولاک ہو جاتا، تجلی گاہ جانا تک اجالے سے پہنچ جاتے، جو تو اے توسن عمرے رواں چالاک ہو جاتا، اگر تیری بھرن اے ابر رحمت کچھ کرم کرتی، ہمارا چشمائے ہستی ابل کر پاک ہو جاتا، حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی کی خاک ہو جاتا، اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غمِ کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا۔
آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے چار شعر طرز میں سماعت کیے، سولہویں شعر میں اس کلام کے شہنشاہ سخن کہتے ہیں، خدا تارے رگے جاں کی اگر عزت بڑھا دیتا، خدا تارے رگے جاں کی اگر عزت بڑھا دیتا، شرا کے نالے پاکے سید لولاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہاں بھی وہی تخیلاتی تصوراتی بات ہے اور ایک آرزو ہے کہ رگے جاں مراد میری زندگی، میرا وجود، میری شخصیت کی اگر میرا رب عزت بڑھا دیتا، مجھ پہ کرم فرما دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رگ بھی لمبی لمبی ہوتی ہے، اور شراک، شراک کہتے ہیں لیسز کو، جوتوں میں لیسز ہوتی ہیں یا چپل کا کوئی بھی حصہ، انہیں بھی شراک کہا جا سکتا ہے، یعنی جوتوں کا کوئی حصہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نعل، یعنی آپ کی مبارک جوتی کا کوئی حصہ میں بن جاتا، آپ کی مبارک جوتی کی لیس میں بن جاتا، اور اس طرح سے میرا رب میری عزت بڑھا دیتا تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ یہ ایک تخیل ہے، اور کتنا پیارا انداز ہے، تارے رگے جاں، تار اور لیس، دیکھیں ذرا ذہن میں دونوں چیزیں کتنی سملر ہیں، لیس بھی رگ جیسی ہوتی ہے، رگ لیس جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ جو آرزو کر رہا ہے جس چیز کو جس چیز سے بدلنے کی، وہ دونوں چیزیں سملر ہوں جتنی، تو اور زیادہ لطف آتا ہے اس کو بیان کرنے میں اور پڑھنے میں۔ تو یہ ہے میرے شہنشاہ سخن کا کمال کہ خدا تارے رگے جاں کی اگر عزت بڑھا دیتا، شرا کے نالے پا کے سید لولاک ہو جاتا، میرے نبی کی مبارک جوتی کی میں لیس بن جاتا، اس کی ڈوری بن جاتا، تو میری شان کتنی بڑھ جاتی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تجلی گاہ جانا تک اجالے سے پہنچ جاتے، تجلی گاہ جانا تک اجالے سے پہنچ جاتے، جو تو اے توسن عمر رواں چالاک ہو جاتا۔ اب اس میں بھی بڑی پیاری بات کی ہے، توسن کہتے ہیں گھوڑے کو، عمر رواں یعنی زندگی کا گھوڑا، ایک یہ گھوڑا ہے جو دوڑتا چلا جا رہا ہے، موت تک اسے دوڑنا ہے، عمر کا چلنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے میری عمر رواں کے گھوڑے، اگر تو تھوڑا چالاک ہو جاتا تو دوڑتے دوڑتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک کیوں نہ پہنچ گیا، चालाक होता तो पहुंच जाता, तू जानता कि तेरी बका कहाँ है, तेरी इज्जत कहाँ है। तो अगर तू चालाक होता, समझदार होता, तो तजल्ली गाहे जाना, यानी महबूब अलैहिस्सलाम के मुबारक रोजे के पास, तजल्ली गाहे जाना, महबूब अलैहिस्सलाम का रोजा यहां मुराद है, कि उनके रोजे तक तू पहुंच जाता उनके करम से, उनकी शफकत से, और उनके नूर के सदके, उनके उजाले के सदके, अगर तू चालाक होता। क्योंकि जो पहुंचना चाहता है उसे मंजिल मिल ही जाती है। तो ढूंढना होता है, चालाकी और समझदारी का तकाजा यह है कि नक्शे कदम मुस्तफ़ा, सुन्नत मुस्तफ़ा पे जिंदगी गुजारी जाए। तो तजल्ली गाहे जाना यानी महबूब अलैहिस्सलाम की तजल्ली की जगह रोजा मुस्तफ़ा तक भी बंदा पहुंच ही जाता है। अगले शेर में कहते हैं, अगर तेरी भरन ए अब्र रहमत कुछ करम करती, अगर तेरी भरन ए अब्र रहमत कुछ करम करती, हमारा चश्माए हस्ती उबल कर पाक हो जाता। सुभान अल्लाह। भरन कहते हैं जोर शोर की जो बारिश होती है उसे, जिससे जो है वो चश्मे उबल जाते हैं, इतना पानी बहता, इतना पानी आता है, चश्मे उबल जाते हैं, जगह जगह पानी उबलने लगता है। तो कह रहे हैं, ए मेरी रहमत के बादल, अब्र रहमत यानी रहमत के बादल, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम की बात हो रही है, कि अगर आप करम फरमा देते और आपके करम की तेज बारिश मुझ पे बरस जाती, तो चश्मा हस्ती यानी मेरा वजूद, मेरे वजूद का जो चश्मा है ये भी उबल कर पाक हो जाता, इसकी गंदगी बाहर निकल जाती और आपकी रहमत अंदर चली जाती, और इस तरह से ये चश्मा भी उबल कर पाक हो जाता और मेरी गंदगी बाहर चली जाती। सुभान अल्लाह। ये भी कवाल की तशबी है, रहमत की बारिश का बरसना और फिर चश्मों का उबल पड़ना, उबल कर पाक हो जाना। कि जब चीज उबलती है, पानी अंदर का बाहर निकलता है, तो गंदगी भी बाहर निकाल देता है। तो इसी तरह अपने लिए कह रहे हैं कि आपकी रहमत की बारिश, और बारिश भी भरन, एक तेज बारिश मुझ पे बरस जाती तो एक मेरी जिंदगी की गंदगी को खत्म भी कर देती और मेरा चश्मा भी पाक साफ और बहता हुआ हो जाता। कि जो बहता हुआ चश्मा होता है वो ज्यादा साफ सुथरा होता है, जो ठहरा पानी होता है वो कुछ मलगजा गंदा हो सकता है, लेकिन जो चलता पानी हो, उबल रहा हो, उसमें गंदगी नहीं ठहर सकती। काश मेरे साथ भी आपकी रहमत की बारिश से ऐसा हो जाता। अगले शेर में मकते में कहते हैं, हसन अहले नजर इज्जत से आंखों में जगा देते, हसन अहले नजर इज्जत से आंखों में जगा देते, अगर ये मुश्ते खाक उनकी गली की खाक हो जाता। अहले नजर यहां मुराद औलिया अल्लाह, अल्लाह वाले जिनके पास नजर होती है, जो पहचान लेते हैं, फिरासत रखते हैं मोमिनाना, तो वो फिर तुझे अपने दिल में जगा देते, अपनी आंखों पे जगा देते कि आइए हमारी आंखों पर करम फरमाइए, यानी आपकी इज्जत करते, आपके एहतराम करते। क्यों? जब मदीने में मुझे मौत मिल जाती, मुश्ते खाक यानी मुट्ठी भर खाक, मुश्ते खाक ये एक मुहावरा है, एक इस्तियारा है वजूद का। कोई भी इंसान होता है वो थोड़ी सी मिट्टी से बना होता है, तो ये मुराद है कि अगर मेरा वजूद मदीने की मिट्टी में मिलकर खाक हो जाता तो अहले नजर मुझे अपनी नजरों पे जगा देते, यानी फिर मेरी इज्जत और एहतराम के क्या कहने होते। तो ये है आशिकों का अंदाज, देख लीजिए आशिकों की क्या तमन्नाएं होती हैं। किसी की तमन्ना है लंदन जाऊं, कोई चाहता है पेरिस जाऊं, कोई चाहता है ये बंगला बना लूं, वो गाड़ी ले लूं, ये ले लूं, वो घूम लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन अल्लाह वालों का आशिकान रसूल की आरजुओं का अंदाज भी कितना निराला है। वो चाहते हैं तो मदीना, वो प्यार करते हैं तो मदीने वाले से, वो मरना भी चाहते हैं तो मदीने में, जीना भी चाहते हैं तो मदीने। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा मुकद्दर अता फरमाए। ये कलाम मुकम्मल हुआ, जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले नए कलाम के साथ फिर मिलेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया।